वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंसर टॉक्स। हमारे आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो पेशे से अभिनेता हैं। पिछले 4 दशकों से वो फिल्म, टेलीविजन और थिएटर करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी चर्चा, उनकी एक पहचान बन गई है, और वो है एक स्विगी अंकल या गुलाब जामुन अंकल के नाम से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऐड किया जिसने उनको ये ख्याति दिला दी। आज हम उनसे ये बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जगह फिल्म टेलीविजन में बनाई, थिएटर से आगे बढ़े, दूरदर्शन पे काम किया, फिल्में उन्होंने की हैं, ओए लकी ओए, दबंग 3, फिर सीरियल्स उन्होंने दूरदर्शन के लिए किए, फिर वही तलाश, दूसरा केवल वे बैक इन 1989-90, और उसके बाद वेब सीरीज करी मिर्जापुर या इलीगल, और कुछ उनकी वेब सीरीज अभी भी अंडर प्रोडक्शन है। तो मैं बात कर रहा हूं नरेश गुसाई की, जो पिछले कुछ अरसों में अपने एडवर्टाइजिंग कैरियर के साथ बहुत विख्यात हुए हैं। तो आइए मिलते हैं नरेश गुसाई से। नरेश गुसाई, आपका द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
मैं जानता हूं कि आपने एक बहुत लंबा अभिनय का सफर तय किया है, जो शायद 4 दशकों का है, जहां आपने थिएटर से शुरुआत करके और आज आप मशहूर हैं स्विगी अंकल या गुलाब जामुन अंकल के नाम से। लेकिन उससे पहले का एक बहुत लंबा आपका सफर रहा है, थिएटर का, टेलीविजन का, फिल्मों का। तो आज मैं चाहूंगा डिटेल में आपसे, आपके बारे में और इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए। तो शुरुआत हम करते हैं शुरुआत से। आपका अभिनय का सफर कब और कैसे शुरू हुआ, ये बताइए।
अभिनय तो वैसे जो है, मैंने अपने जीवन जो है 5 साल की उम्र में,
जी
मतलब 67 से मैंने शुरू किया था अपने फादर के साथ।
ओके।
मेरे फादर जो है
जी,
वो भी थिएटर करते थे
जी।
उसमें जो है थिएटर में पार्टिसिपेट करता रहता, मिनिस्ट्री कंपटीशन के उनके प्लेज होते थे, तो उसमें कोई ना कोई छोटे छोटे बच्चों के रोल करता रहता था
जी।
फिर उसके बाद धीरे 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 फिर पंजाबी थिएटर करना शुरू किया।
अच्छा।
पंजाबी थिएटर करते करते तब तक दिल्ली में इतना ज्यादा मीडिया का काम नहीं होता था
जी।
और पहला जो है मैंने कैमरा फेस किया था 81 में, एक शॉर्ट फिल्म थी दूरदर्शन की, उसके अंदर 81 में मैंने कैमरा फेस किया था
जी, जी।
फिर 85 से 86 से ऑनवर्ड
जी,
जहां मतलब दूरदर्शन में जो जो काम चलते रहे, सीरियल में जो छोटे मोटे रोल मिलते रहे
जी, जी।
तो वह वैसे करते चले गए। फिर उसके साथ साथ हम थिएटर करते थे, थिएटर के साथ साथ नुक्कड़ नाटक करते रहे, जो आज भी मेरा बेस है।
अच्छा, अच्छा।
फिर फिल्में भी मिलती गई
जी,
फिर
जी।
मैंने सुभाष गई जी के साथ कांची फिल्म की, रजत कपूर जी के साथ आंखों देखी की, मृगदीप लांबा जी के साथ तीन थे भाई की
जी, जी। नरेश, आपने जो कह रहे हैं कि आपने थिएटर, पंजाबी थिएटर की शुरुआत करी, शुरुआत और 81 से पहले से आप कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था, तो जब प्रोफेशनल लेवल पर ये एक्टिंग करते थे, या उस जमाने में क्या कुछ पैसा मिलता था या सिर्फ शौक के लिए होता था, और कहां करते थे, ये दिल्ली में था या पंजाब में?
नहीं नहीं नहीं, दिल्ली में सब्रू हाउस वगैरह में प्लेज वगैरह अक्सर होते थे, हिंदी प्ले होते थे, श्रीराम सेंटर में हो गया या कहीं एलपीजी में हो गया, आईफेक्स हॉल में हो गया। पंजाबी के लिए ज्यादातर जो है वो सब्रू हाउस में होते थे, और उस समय पेमेंट वगैरह कुछ नहीं होती थी, कन्वेंस ही मिल जाता बहुत था।
अच्छा।
उस समय पेमेंट वगैरह का वो नहीं था, क्योंकि सब लोगों का पैशन था, पैशन में ये सब करते थे
जी, जी, जी।
फिर उसके बाद मैंने जो है, अगर मैं अपना ये कहूँ कि मुझे सही इस लाइन में जो मार्गदर्शन मिला वो लेक टंडन जी के द्वारा मिला, उनके साथ
जी।
फिर वही तलाश किया
जी,
उसमें तो आप भी थे, और फिर दिल दरिया, दूसरा केवल, उर्लिंग जी के साथ काफी समय रहने से बहुत कुछ उनके साथ सीखते सीखते फिर आगे की मंजिलें शुरू हो गई।
तो पहले के जो आपने 3 सीरियल के अभी नाम लिए, जो लेक टंडन जी ने डायरेक्ट किए थे, फिर वही तलाश, दूसरा केवल और दिल दरिया, तो इसमें आपको किस तरह के रोल उस वक्त मिले और क्या आपने किया, कोई खास यादें किस तरह से ये रोल आपके पास आए?
नहीं, वो जो कैरेक्टर जो है मतलब दूसरा केबल में तो अच्छा एक इंस्पेक्टर का रोल था, बाकी भी छोटे छोटे रोल थे दोनों सीरियल के अंदर, लेकिन वो अपनी पहचान छोड़ने वाले थे। लेख टंजी जी एक ऐसे अनुभववान व्यक्ति थे कि वो दूर से देख के क्या हाँ कौन सा करेक्टर किसको फिट जाएगा वो वैसे ही करवाते होते थे,
उसी तरह करवा देते। थिएटर के बारे में मैं और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि थिएटर से आपकी शुरुआत हुई और कहा यह जाता है कि जो लोग थिएटर में काम करते हैं वो अभिनय में बड़े पक्के हो जाते हैं, उनको किसी भी तरह का आप एक्टिंग की जा करवाई जा सकती है। तो थिएटर में जब आप करते थे और उसके बाद आप दूरदर्शन में आए, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन ही एक माध्यम था, कोई प्राइवेट चैनल या सीरियल्स तो बनते नहीं थे उस वक्त, तो आपको दोनों मीडियम में क्या फर्क नजर आया उस वक्त के थिएटर से अचानक कितनी दिक्कत परेशानियां हुई?
थिएटर में तो एक्चुअली जो है ना सबसे पहले आपका पेशेंस देखा जाता है, बिल्कुल आप थिएटर करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। कईयों को शौक होता है
जी जी
कि हाँ आओ जी फटाफट स्क्रीन पे नजर आ जाऊं मैं, उसके अंदर में वो गुण है कि नहीं है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि मैं एक्टर तो मैं हूं ही, मुझे सिर्फ एक ब्रेक मिलना चाहिए। सेम चीज थिएटर में क्या होता था कि पहले जो है उसका पैशन देखते थे, हमें इसका कितना पैशन है, उसके बाद उससे जो है छोटे छोटे करेक्टर करवा के ये उसको कर सकेगा, बड़े को नहीं कर सकेगा। कभी रेसल में करवाया, कभी प्रॉक्सी करवाई, तो देखा कि ये उस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिर उसको स्टेज के ऊपर उतारा जाता था, उसमें एक टाइम पीरियड प्रोसेस लगता था। आजकल के लड़के जो सिंपल ये सोचते हैं चलो, जबकि थिएटर जो है आपकी ना केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, मेमोरी इन्हांसमेंट कराता है, आपके ऊपर बहुत सारे जो है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को स्कूलों के अंदर थिएटर वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर के छुपे हुए गुणों को बाहर निकालता है। थिएटर सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो झिझकते रहते हैं,
बिल्कुल
थिएटर जो है वर्कशॉप जो है उनको बाहर निकाल के रख देता है।
नरेश, हम आपके फिल्मों के और कैरियर की तरफ तो अभी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अब पहले मैं वो जानना चाहूंगा जिस चीज में पिछले कुछ सालों में आपने बहुत चर्चा में आप रहे हैं और एक अच्छे खासा आपने ख्याति प्राप्त की है, और वो है एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स। आपने इन दिनों में काफी एडवर्टाइजमेंट फिल्म की है, आपने बिस्लेरी का किया, स्विगर का किया, और स्विगी में तो आप स्विगी अंकल के नाम से ही जाने जाने लगे। तो किस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में आप कैसे आए, क्या मौका मिला आपको, कैसे मिला?
एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी इतनी हैंडसम है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एडवर्टाइजमेंट लाइन में जा पाऊंगा।
जी जी
लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है अपने आप में।
जी।
और मैं बेसिकली के दिल्ली में ही थिएटर कर रहे थे और अपने नुक्कड़ नाटक चलते रहते थे।
जी जी।
तो बम्बे में भी स्ट्रगल चालू रहती थी, थोड़ा थोड़ा आके करते रहे। तो इतने में एक ऑडिशन के लिए बोला गया कि आप एक जो है ऑडिशन दे दो। तो उसमें यही था कि एक आदमी चोरी से आता है
जी।
और गुलाब जामुन खाता है और अंदर चला जाता है और बीवी के पास जाकर छुपके बैठ जाता
है।
तो हमने वो ऑडिशन वैसे ही दिया।
जी।
ऑडिशन देने के बाद पता लगा जी हमारा सिलेक्शन हो गया है, बॉम्बे आके वो शूट भी किया। तब तक हमें कुछ ऐसा नहीं था। और जब मैं उसका IPL में टेलीकास्ट शुरू हुआ
जी जी,
तो बहुत सारे अच्छे बड़े एक्टरों ने मेरे को कहा कि आपने बहुत कमाल का काम किया है
जी।
तो मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या किया है जो कमाल लग रहा है। मुझे लगा ये मैं 30 साल से यही करता आया हूँ, यही स्माइल देता आया हूँ, लेकिन उसकी पहचान जो है
वो अब बनी
है। इस 20 सेकंड के गुलाब जामुन ने दिलवा दी
जी, बिल्कुल।
तो शिवजी ने वो पहचान जो है वो उसके कारण दिलवा दी, जबकि काम मैं वही कर रहा था
जी।
और उसके बाद लेकिन ये है कि जहां पर सबके मीडिया अलग अलग है, मीडियम सबके, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, एड हो, एड में आपने 20 सेकंड के अंदर वो सारी बात कहनी है जो प्रोडक्ट के बारे में है, पूरी स्टोरी टेलिंग है, और उसके बाद उसके एक एक फ्रेम के अंदर आपको रिएक्शन देने हैं। ये बहुत ज्यादा सीखने का मौका मुझे एड में पता लगा।
बिल्कुल, वो एक गागर में सागर है, मतलब उस छोटे से उस 20 सेकंड में पूरी कहानी कहनी होती है।
सर मतलब जब मेरे ये दो तीन मतलब मैंने स्विगी के जितने भी ऐड किए हैं उसमें मैक्सिमम दो ऐड के अंदर मैंने दो शब्द बोले हैं, बाकी पूरी ऐड में किसी में भी कोई शब्द नहीं बोला है।
जी,
पूरी रिएक्शन के ऊपर
है।
एक में ही है करोड़ों लोग कमा रहे हैं, मंगा रहे हैं, और एक में है येलो बेटा, बाकी सारी एड में जो है रिएक्शन रिएक्शन के ऊपर है। तो फॉक्स मैगजीन वालों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि सर आपका इंटरव्यू लेना है।
अच्छा,
मैंने कहा मेरा इंटरव्यू भाई? फॉक्स वाले तो बड़े बड़े कहते सर मैं बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा है, उसका कारण यह है कि आपकी एड ने एडवर्टाइजमेंट लाइन के अंदर एक अलग मुकाम बना दिया है
जी, जी।
वो जो है कि जहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं कि बिना कुछ बोले 30 सेकंड के अंदर पूरी स्टोरी नरेट कर देना। मैं कहा ये सारा जो है जाता है डायरेक्टर को कि उसने कैसे सोचा और कैसे करवाया।
बिल्कुल बिल्कुल,
वो जो है कि हाँ उसका भी बेनिफिट मिला
जी। कोई खास कोई ऐसी घटना हो जो इस शूट के दौरान हुई हो जो आप मेंशन करना चाहें या इस एड के शूट के दौरान?
एड के शूट के दौरान मतलब आप सबसे बड़ी बात ये है
जी
कि आज तक हम कभी कहीं बाहर फॉरेन कंट्री नहीं गए। इसका एड शूट करने के बाद मुझे फोन आया
जी
कि सर एक शूट करना है। मैं सीन कितने हैं? कहते एक सीन है। मैं कहा एक सीन नहीं करता मैं। तो पहले करता है, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज लाया जाए लाइफ में। तो पता लगा साजिद सर ने आपका नाम दिया है और ये शूट लंदन में होगा
ओके
हाउसफुल 4 के लिए। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने पहले कहा कि आप इस एड से पहले भी कभी एक्टिंग किया? मैं कहा एक्टिंग तो मैं 30 साल से करता आ रहा हूँ लेकिन पहचान मुझे 20 सेकंड ने एड ने दी है
जी,
जो मुझे आप लंदन लेके जा रहे हो
जी।
तो समय बड़ा एक प्राउड फील होता था कि इस एड के कारण मुझे मेरा कहाँ पे चेंज आया लाइफ।
बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो आपने काफी एड्स किए हैं पिछले दिनों में, और बिस्लेरी का किया कुछ
नहीं, मैंने किया है, मैंने अभी अक्षय जी के साथ चल रहा था
जी,
टुकड़े का एड
right.
रणबीर कपूर जी के साथ चल रहा था, लेस का आलिया भट्ट और रणबीर
कपूर
जी के साथ, अक्षय जी के साथ दो थे। उससे पहले भी कई जो है चलते रहे, जिलेट का चलता रहा है, सर्फ एक्सर बहुत फेमस रहा है मेरा, किशोर अंकल
जी। अच्छा यह एक चीज मुझे याद आती है नरेश, मैंने और खुद देखा है लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल अभी याद नहीं है, अभी अभी आपके उससे याद आया कि मैंने एक गाना देखा है जिसमें आपने कुछ लोगों के साथ, कुछ बच्चे हैं कुछ पार्क में बैठे हैं और आप वहां जाके कुछ करते, वो कौन सा था? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है लेकिन इस वक्त कोई अब पूरा एक गाने को शूट किया गया है
पूरे गाने। हमको कुछ नहीं मालूम क्या
हमको कुछ नहीं मालूम जी 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 जी
वो कुछ नहीं
वाला, वो क्या है, वो किस तरह से मतलब क्या है?
कुछ नहीं। वो हिमांशु सर का गाना है
जी
जी, उन्होंने जो है वो एल्बम निकालते बहुत अच्छा गाना लिखा वो
जी,
वो है हमको कुछ नहीं मालूम
जी।
तो उसके अंदर वो टीचर है वो आता है तो वो जो एक्स्ट्रा क्लास कोचिंग होती है उसके अंदर जो है वो चलता रहता है, तो उसके अंदर वो सारे फिर गाना गाना शुरू कर देते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
वो बेसिकली वो दिखा रहा था कि हाँ भाई कैसे आपने जाके ज्वाइन करना है कंपनियों को
जी जी जी। वो कुछ साल पहले आया था राइट, मतलब कुछ समय हो गया
अभी नहीं, 4-6 महीने पहले आया है।
अच्छा 4-6 महीने पहले आया है। नरेश ये बताएं कि आप दूरदर्शन करते रहे, आपने थिएटर किया, तो ये फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
फिल्मों में एक्चुअली पहले जो है दिल्ली में इतनी फिल्में आती नहीं थी
जी,
दिल्ली में आने शुरू हुई तो छोटे छोटे जो छोटे करेक्टर होते थे वो दिल्ली से कास्ट किए जाते थे।
मतलब आप पहले दिल्ली बेस्ड हुआ करते थे?
मैं तो दिल्ली बेस्ड, मैं 50 साल दिल्ली में रहा,
दिल्ली में रहे
और अभी 5-7 साल से ही मैं बॉम्बे में जो अपना बेस बनाया
जी जी,
तो दिल्ली में ही हम काम करते रहे। और उस समय तक थोड़ा सा ये भी रहा कह सकते हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम रही, कुछ ये था कि यहाँ पे ये भी रहता था कैसे शुरुआत होगी
जी जी।
तो धीरे धीरे कुछ कास्टिंग के लोग जो है यहाँ से दिल्ली जाके जो दिल्ली फिल्में शूट होने लग पड़ी उनमें करेक्टर कास्टिंग करते रहे, तो छोटे छोटे करेक्टर हमें वहाँ पे मिलते रहे, थोड़ी हिम्मत भी बढ़ती रही
जी जी,
थोड़ा जज्बा बढ़ता रहा। फिर हमने यहाँ पर आके शुरू किया, तो दिल्ली में बैठे बैठे मुझे बहुत सारी फिल्में की मैंने, 3 थे भाई, व्हाट द फिश, और उसके बाद आपका लकी और लकी, विकी डोनर
जी।
उसी का बेस ये रहा कि मुझे बॉम्बे में भी रजत कपूर जी की आंखों देखी ये सारी मुझे यहीं पे मिली, इवन मनोरमा 6 फीट अंडर मैंने की वो भी वहीं पे मिली। उसके बाद मुझे यहाँ पे ही हो गया कि सुभाष गई की कांची मिली, मॉम मिली, कई फिल्मों में ठाकरे मिली, बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे करेक्टर मिलते रहे और उसी के साथ साथ स्ट्रगल में ये ब्रेक आ गया कि बीच में ऐड आ गया। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम कभी ऐड कर सकते, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी मजेदार सी है लेकिन जब ऊपर वाला देता तो वो अपने आप ट्विस्ट कर देता सब चीजें,
आप ट्विस्ट करता है।
आप एफर्ट्स कीजिए, मैं आपको दे दूंगा।
तो इतरेश, क्या थिएटर आपका अभी भी कंटिन्यू हो रहा है?
मैं नुक्कड़ नाटक अभी भी करता हूँ।
अच्छा,
जब मुझे समय मिलता है मैं दिल्ली जाके जो है थिएटर नहीं करता
जी।
थिएटर एक्चुअली कमिटमेंट मांगता है, उसके लिए 2 महीने की रिहर्सल चाहिए, डेडिकेशन चाहिए
जी।
अभी वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
राइट।
हाँ, नुक्कड़ नाटक ये है कि वो मेरे दिल्ली में चलते रहते हैं
जी,
तो जब भी मुझे मौका मिलता है खाली होता हूँ मैं दिल्ली जाकर नुक्कड़ नाटक जरूर करना। नुक्कड़ नाटक से जो है मेरे को अपनी स्ट्रेंथ मिलती है, नाटक करता हूँ पैशन आता है कि आप कुछ किया है
जी जी,
तो लाइव परफॉर्मेंस करने का जो मजा है वो एक अलग है,
वो अलग अलग है
और अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता रहता
है। बिल्कुल। ऋषि, एक चीज बताइए कि जो आपने खुद अभी अपने शब्दों में कहा और एक बड़े हंसी के और हल्के अंदाज में बोला कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जितने लोग मैं जाता हूँ आज देखते हैं कि मुंबई जाते हैं, मेरे ख्याल से आज भी सैकड़ों लोग जाते होंगे जो हीरो बनने जाते हैं, और सफलता उनको उतनी नहीं मिल पाती है जितनी वो सोच के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो यंगस्टर वहां जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे कोई गुर सिखाना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, स्ट्रगल कर सकें आगे और सफलता पा सकें?
मेरा ये मानना है कि जो एक्टर है
जी
वो सब के काम करता है, जिम में काम करेगा जाके
जी,
पार्क में घूमेगा, सब पे करेगा, लेकिन एक्टिंग के ऊपर अपना वर्कआउट नहीं करता।
Right.
बाकी म्यूजिशियन म्यूजिक के ऊपर रियाज करेंगे, सिंगर जी. भी रियाज करेंगे, एक्टर कोई रियाज नहीं करता और वो सोच के चलता है कि ये तो ऐसा है हो जाएगा।
Right.
कि आपने कितना अपने पर वर्कआउट किया है, 90%
जी.
ऐसे ही एक्टर आते हैं जो सोच के आते हैं कि हम कर सकते हैं,
हम तो कर सकते हैं और हमें अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है,
हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बस ये बता दो ऑडिशन कहाँ हो रहा है, क्लिक तो हम कर लेंगे। मतलब आपके पास 500 का एक ऐसा नोट है जो 8 रूमर से पहले का है वो जेब में लेके चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जाते हैं मार्केट में कोई बेचता तो है नहीं माल, तो कहते हैं ये सब अपने रिश्तेदारों को काम दे रहे हैं, मुझे माल बेचना नहीं चाहते। उनको ये नहीं पता कि उसके पास नोट नकली है, मतलब नोट मतलब ज्ञान का नोट नकली, क्या आपको आता नहीं है लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ।
मतलब बेसिकली आप कहते हैं कि एक्टिंग भी जो है उसको भी रियाज की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है।
रियाज तो हर जगह जरूरत है, आप जितने भी देख लो, मैंने बहुत से एक्टर को देखा वो अपने शीशे के सामने बैठ के कोई बालों को करते रहेंगे, कपड़ों को देखते रहेंगे, यार ये कपड़े प्रेस है कि नहीं है। आपकी एक्टिंग देखी जाती है, कपड़े नहीं देखे जाते, बाल नहीं देखे जाते
जी जी।
आप में तब अप्रिशिएट किया जाता है यार एक्टर बढ़िया है, इसने आज तक कहा यार कपड़े बढ़िया थे, उसके बाल बिखरे हुए थे।
हो सकता है
आपको कंसंट्रेट
जी
जितना कंसंट्रेट आपको एक्टिंग पे करना चाहिए
जी,
उतने से ज्यादा आप कंसंट्रेट अपने बालों पे और अपने कपड़ों के ऊपर कर सकते हैं। कि अगर आप अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, कपड़ों का डिपार्टमेंट कपड़ों वाले देखेंगे
जी,
बाल का डिपार्टमेंट बाल वाला देखेगा। हमें सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही दूसरे को बताना है कि मैं क्या हूं।
बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीजें भी जरूरी है लेकिन पहले तो अपने हुनर को ही आपको गवाह करना है।
सर, वो करेक्टर के हिसाब से जरूरी है,
वो
मुझे ऐसा लगता है
जी।
जैसे आमिर खान जी ने दंगल की, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाया भी, कम भी किया।
बिल्कुल।
अगर वो देखो 3 इडियट में देखो तो वो जवान बन गए।
बिल्कुल।
उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से मूव करा दिया,
लेकिन अल्टीमेटली उनकी एक्टिंग का जो क्वालिटी है,
जब संगीत कर रहे थे
जी, अल्टीमेटली उनकी एक्टिंग की क्वालिटी है वो जरूरी है,
वो जरूरी है, पर्सनैलिटी उसके साथ एक पार्ट है
जी जी। बिल्कुल राइट,
आपको ये जरूरी है, ठीक है, फिट रहना बहुत जरूरी है।
राइट,
सबसे पहले तो फिट रहना जरूरी है
जी।
मैं अक्सर गार्डन में जाता हूँ
जी,
सुबह भी जाता हूँ शाम को भी जाता हूँ
जी,
और 1-1.5 घंटा लगा देता हूँ, तो लोग मेरे को सारे कहते सर इतनी एक्सरसाइज करते हो फर्क तो 5 ग्राम नहीं पड़ता तो मैं कहता हूँ मैं मेंटेन होने के लिए करता हूँ।
अच्छा एक चीज बताइए, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग नए वहां जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे विषय हैं जो इंडस्ट्री में बड़े उछल कर सामने आए हैं। एक तो है नेपोटिज्म का, और दूसरा था एक जो जिसके बारे में मी टू मूवमेंट चलाया गया था। इन दो के बारे में मैं
थोड़ा सा इन कंट्रोवर्सी इशू से थोड़ा सा बाहर रहता हूँ,
okay.
और थोड़ा सा क्योंकि मेरे को इससे लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ अपना मकसद अपने तक ही है
जी, जी, जी.
कि मैं जो है, क्योंकि मेरा ये मानना है
जी,
जब तक आप किसी को लिमिट क्रॉस करने की वो नहीं देंगे तब तक कोई आपको टच नहीं कर सकता।
डन सर, बिल्कुल।
आपका कहीं स्वार्थ होता है तो आप ऑफर करते हो, और बाद में स्वार्थ हल नहीं होने पे आप ब्लेम लगा सकते हैं।
जी, 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 जी।
और इसका दोनों चीजें हैं,
दोनों
रेसिप्रोकल भी है सब लोग, और लेकिन ये कुछ लोगों के कारण पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया जाता है, ये भी नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो है सारे लोगों को बदनाम कर दिया जाता है, वो भी गलत है। अगर ऐसे होते तो लोग अपने परिवार में जो हीरो हीरोइन है वो अपने बच्चों को क्यों आगे भेजते, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के सबके लड़के लड़कियां सब आ रहे हैं
जी, जी।
अगर उनको लगता है ये गंद है तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजते,
नहीं भेजते। और नेपोटिज्म का तो मेरे ख्याल से जीता जाता एग्जांपल एक आप ही हैं, जिनका कोई मेरे ख्याल से गॉडफादर, आप खुद कह रहे हैं कि ऑडिशन देके इस उम्र में आके आपने एक ऑडिशन दिया और आज क्लिक कर रहे हैं।
मैं
जी,
अगर अगर ये होता
जी,
एक्टिंग बेस्ड
जी
है ना, बड़े बड़े प्रोड्यूसर
जी
जिनके बेटे इस लाइन में आए और वो उनको क्लिक नहीं करा सके तो वो एक्टिंग ही काम आएगी आपका। एक बार ब्रेक दिलवा लेंगे, दो बार दिलवा लेंगे, अल्टीमेटली तो काम तो एक्टिंग ही
आएगी
कोई भी नहीं। तो अब किसी का भी नाम ले सकते हैं जिन्होंने अपने बेटों को बड़े अच्छे से ब्रेक दिए
जी, जी।
लेकिन वो अगर क्या होता है तो वो अपने बच्चों को काम नहीं दे देते। और अगर देखा जाए तो नवाज जी ने कितने साल मेहनत की तो उनके ऊपर क्या कोई गॉड फादर था? जब उनका क्लिक करना था वो क्लिक किया। इरफान खान का क्या गॉड फादर थे?
Absolutely. बहुत एग्जांपल।
अब जिनके आप नाम लेते हैं
जी,
उनके भी अगर उनको अगर एक्टिंग का या डायरेक्शन का तजुर्बा ना होता तो उनकी अच्छी फिल्में लोग पसंद नहीं करते।
अल्टीमेटली तो व्यूअर है, दर्शक है जो उस चीज को सफल बनाएगा या असफल,
डिसाइड करता है।
Absolutely.
वो डिसाइड करता है। प्लस कि ये कुछ जो है जो लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है, और हमें मौका मिलना चाहिए कि हम दूसरे को क्रिटिसाइज कर
सकें।
अपने पे तो देख लो यार
जी,
अब मुझे तो काम नहीं मिला, जिन लोगों को यहाँ से बम्बे में आके स्ट्रगल की
जी,
वो 500 का नकली नोट लेके आए घूमे और अपने घर पहुंचकर कहा अरे सब अपने सर को काम देते हैं।
बिल्कुल ठीक।
वो लड़कियों को काम देते, लड़कों को काम देते हैं जो उनका मकसद हल करते, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अपने आप एग्जाम्पल हूँ,
बिल्कुल वही
तो मैं कैसे कह दूं
जी, बिल्कुल ठीक है। नरेश अब कुछ मुझे बताइए कि आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए।
आने वाले प्रोजेक्ट के ये है, एक फिल्म है कोका कोला जिसमें मैं सनी लियोनी जी के साथ आ रहा हूँ, साथ आ रहा हूँ एज ए फादर।
ओके जी
बहुत जल्दी वह फिल्म रिलीज होने वाली है।
okay.
बड़ी अच्छी हॉरर मूवीज है
जी, जी।
कमाल की जो है उसमें एक्टिंग सनी लियोनी जी ने की है।
okay.
और एक और की है मुन्ना मुन्नी की शादी
जी।
कुछ एड आईपीएल में आपको नए नए नजर आएंगे।
okay.
जो अभी आने वाले हैं जल्दी आईपीएल
right.
के अंदर कुछ धमाका करेंगे कुछ एड आके।
क्या बात है, क्या बात है। सो नरेश आई थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और द इन्फ्लुएंसर टॉक में बात करी, and we wish you all the best for your future endeavors.
Thank you dear, thank you very much.
Thank you. Listeners, I hope you had your learnings from this episode and got inspired to keep moving towards attaining your goals. Please share this episode with your friends by visiting my website www.theinfluencertalks.com. If you have stories to share about people who influenced you positively, please do share with me, and I am waiting to hear from you. I'll catch up with you next week
with a new episode of the Influencer Talks. Till then, be safe and be healthy.